नमस्कार दोस्तों, सिमरन केसरी स्वागत करती है आपका कहानी दिल से दिल तक में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अंतर होत उदासी, जिसकी लेखिका है बानो कुदसिया। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी ना तो अपनी कोई इच्छा है, ना ख्वाहिश है और ना ही चाह। आइए कहानी सुनते हैं। ये पहली बार था, इसके बाद दो बार और ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसे। जब मेरा बायां पांव बांस की सीढ़ी के आखिरी डंडे पर था और मेरा दायां पैर सहन की कच्ची मिट्टी से 6 इंच ऊंचा, तो पीछे से माँ ने मेरे बाल ऐसे पकड़े जैसे नए नए चूजे पर चील झपटती है। मेरा संतुलन कुछ ऐसे बिगड़ा कि मैं कपड़े की गुड्डी जैसी अड़ंग बड़ंग कच्ची मिट्टी पर जा गिरी। माँ को मुझे पटखनी देने या धप्पा करने की नौबत ही ना आई, क्योंकि जब इंसान किसी से बिछड़ कर आ रहा हो तो उसमें इतनी जान ही कहाँ होती है। मुझे तो एक गर्म सांस उस वक्त चारों कंधे गिरा सकता था। माँ ने तो फिर मुक्का मारकर मेरे बाल झिंझोड़े थे।
बोल बोल, इस भरी दोपहर में तू कहाँ से आ रही है? घुमक्कड़, लानती, कहाँ थी तू इस वक्त? बोल, गर्मी ऐसी कि छांव तले धरती फट जाए, और तू ऊपर कोठे पर क्या कर रही थी? ना खस्मी?
मैं चुप रही।
बोल, कौन है ऊपर? ऊपर ना कोई कमरा ना टट्टी, फिर ऊपर क्या लेने गई थी तू? जिस यार हिमायती से मिलने गई थी तू, उसका मैं लहू पी जाऊंगी। बोल उसका नाम।
मैं और भी गूंगी हो गई। मेरे अब्बा भी बड़ा चुप आदमी था, लेकिन उसकी चुप, उसका गूंगापन, उसके मौन व्रत सब माँ को सताने के लिए होते थे। उसे माँ को तड़पाने में बड़ा मजा मिलता था। वो अपनी बड़ी बड़ी मूछों तले मुस्कुराता रहता, पर माँ की किसी बात का जवाब न देता। वो उस कचहरी में अपनी सफाई के लिए कभी एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालता। उसी चुप में अब्बा की सारी इज्जत और जिंदगी भर की जीत निहित थी। जब माँ बोल बोल कर हलकान हो जाती, ताने बद्दुआएं कोसने आहें सिसकियां सब बारी बारी अपना अपना दौर खत्म कर चुकती, तो दीवार के साथ खड़ी चारपाई आंगन में बिछाती और उस पर औंधी लेट जाती। ऐसे में बासी रोटी की तरह उसके चेहरे पर अनगिनत दाग धब्बे नजर आने लगते। मुझे माँ पर बड़ा तरस आता, लेकिन अब्बा अलग था। औरत मर्द के उस खेल में जब वो जीत चुकता तो फिर चार खाने का खेस कंधे पर डालकर यूं निकल जाता जैसे पहलवान अखाड़े से कुश्ती जीत कर जाते हैं। माँ मेरे और अब्बा के दरमियान बेढंग टकराने वाली गेंद थी। मुझ दीवार से टकराती तो टप्पा खाकर अब्बा की तरफ जाती, वहां पत्थर से सर फोड़कर फिर बुड़ककर मेरी तरफ आती। माँ की सारी उम्र इसी बेमसरफ आगा पीछा में गुजर गई, और सारी उम्र उसे इल्म न हो सका कि ये खेल सिर्फ उसी को थकाने वाला था। काफी रात गए अब्बा लौटता तो माँ ऐसी नींद सोई होती जो जच्चा को बच्चे की पैदाइश के बाद नसीब होती है। मैं कुंडी खोलती, अब्बा मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरता और चुपचाप अंदर चला जाता। अब्बा की हर बात बिन कहे मुझे समझ में आती थी, और माँ की ये बातें ऐसी थी जैसे गूंधे आटे की भरी कनाली पर ऊपर ही ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हों। मेरे पल्ले कभी कुछ न पड़ता। अब्बा बड़ा चुप आदमी था, लेकिन अब्बा की चुप में एक चाल थी। मैं अब्बा की तरह चुप नहीं, मेरी चुप हवेली के सदा दरवाजे के कदमों में गिरे हुए उस ताले के मानिंद है जिसे पिछली रात चोर दरवाजे के कुंडे से उतार कर फेंक गए हों। ऐसा ताला बहुत कुछ कहता है, लेकिन कोई तफसील बयान करने में नाकाम रहता है। वो सारी वारदात से आगाह होता है, लेकिन अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता। हिफाजत ना कर सकने का गम, अपनी बेवकूफ़ी का एहसास, अपने मालिकों के साथ गहरी दगाबाजी का हैरत में डालते हुए खुलना उसे गुमसुम कर देता है। मेरी और अब्बा की चुप में बड़ा फर्क था। अब्बा उन ऊंचे पहाड़ों की तरह चुप था जिनके कदमों में लहरें शोर मचाकर सो जाती हैं। मेरी चुप उस लावे के मानिंद थी जो जमीन के अंदर उबलता, सड़ता, बहता, कहीं का कहीं उतर जाता है।
यूं चुप क्यों खड़ी है अपने कुत्ते बाप की तरह? बोल, किसी यार की बगल गरम करके आई है नामुराद?
इसी मुसीबत के हाथों अब्बा ने कुछ साल पहले बड़ी लंबी खामोशी अख्तियार कर ली थी। वो सफाई पेश करने के झंझट से फारिग होकर लंबी तान कर सो गया था। मैं माँ को क्या बताती, कहाँ से शुरू करती और कहाँ जाकर खत्म करती।
कुत्ती, हमारा कोठा सारे मोहल्ले से नीचा है, किस किसने तुझे आते जाते ना देखा होगा। बोल, कितने अरसे से सिलसिला जारी है, कौन सा महीना लगा है, बता जल्दी, कोई डॉक्टर दाई तो कर मरूं इज्जत गवाने से पहले।
एकदम आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। अभी थोड़ी देर पहले उसने मेरी चोटी पकड़कर यही कहा था। मैं अम्मा को क्या बताती कि अभी अभी मैं उसके मुंह से यही सुनकर आई थी। बोल, बताती क्यों नहीं, रोई क्यों जाती है, किसी डॉक्टरनी की जरूरत है तो खर्च मैं करूँगा। बोल, रोती क्यों जाती है, कुछ बताती क्यों नहीं। ना मैं उसे कुछ बता सकी और ना अम्मा को। बचपन से मुझे यूं लगता है कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो समझेगा नहीं, उल्टा ना समझकर मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं कच्ची मिट्टी से उठी और अंदर गुसलखाने में चली गई। माँ कुछ देर दरवाजा धड़धड़ाती रही, फिर ताने कोसने और बददुआएं जारी हुई। इनका स्टॉक खत्म हो गया तो वो देर तक दरवाजे के साथ लगकर रोती रही। फिर उसने अपनी पुरानी तकनीक इस्तेमाल की, आंगन में चारपाई पर लेट गई और मेरे पैदा होने से लेकर आज तक के तमाम वाकयात ऊंचे ऊंचे दोहराने लगी। मेरा हमल उस पर कैसे भारी था, मुझे जन्मने में उसने कैसी पीड़ा बर्दाश्त की थी, फिर कैसे छल्ले में मुझे खसरा निकल आई और वो पूरे 19 दिन पलंग पर लेटी रही गोद में लेकर। मुझे पालने पोसने में उसने जो जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी, उनका आंखों देखा हाल बयान करते करते शाम भर गई। जब मैं बाहर निकली तो माँ की सारी गैस निकल चुकी थी। वो एक छोटे मासूम बच्चे की तरह अलानी चारपाई पर घोक सो रही थी और उसके बाएं गाल पर बांध की रस्सियों का जाल सा बना हुआ था। शाम को नीम के दरख्त पर अनगिनत चिड़िया चहचहा रही थी, लेकिन माँ को उनके शोर का इल्म न था। ऐसे में अगर मैं किसी के साथ भाग जाती तो माँ को इल्म ना होता। लेकिन मैं भागती किसके साथ, जिन औरतों को मर्द भगा ले जाते हैं, खुदा जाने वो कैसी होती हैं। हम जैसी लड़कियों से तो कोई भगा ले जाने का वादा भी नहीं करता। मैं चुपचाप चारपाई के पाए से सर जोड़कर बैठ गई। माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा था भी कौन, अब्बा का भी सिवा माँ की दुनिया में और कोई नहीं था। वो लाख बार घर से गया और फिर इसलिए लौट आया कि उस खोटे सिक्के को संभाल कर रखने वाली एक ही तिजोरी थी। मेरा अब्बा इतना निखट्टू था कि मुंह पर झूलने वाली मक्खियां भी आखिरकार उसे छोड़ जाती। वो बहुत कम खाता था क्योंकि उसे निवाले तोड़ने से दहशत होती थी। आधे पिंडे से ज्यादा को भी वो एक वक्त में साबुन नहीं लगा सका, इसलिए वो नहाने से जी कतराता था। सर्दियों में बगैर लिहाफ के पड़ा रहता, गर्मियों में पसीने में नहाए नजर आता, लेकिन पंखा कभी न झलता। अब्बा उस खुत्ती के जैसा था जो बच्चे गुल्ली डंडा खेलते वक्त खोदते हैं। कभी कभी बरसाती पानी उसमें खुद भर जाता है, वरना ज्यादा उम्र उसकी मुंह खोले ही गुजरती है। माँ ने सारी उम्र अब्बा का साथ दिया, भले ही बोलकर ताने देकर हलकान होकर सिसकियां भर कर दिया, पर दिया। हम दोनों पक्की दीवारों से सर फोड़ फोड़ कर माँ बूढ़ी हो गई। उस बूढ़ी आधी जान घायल को मैं क्या बताती, कहाँ से बात शुरू करती और कहाँ जाकर खत्म करती। हमारे घर में उस चीज का अभाव था जिससे जिंदगी परवान चढ़ती है, मुकम्मल होती है। दौलत, शराफत, मोहब्बत, इन चीजों का हमेशा घाटा टोटा रहा। हमें तो हर चीज ऐसे मिली कि सांसें कायम रहीं, लेकिन उनके आसार खुलकर पैदा ना हुए। जब मैं 3 साल की हुई तब से माँ एक करीबी फैक्ट्री में काम करने जाने लगी थी। अब्बा और मैं घर पर रहने लगे थे। हम दोनों अपनी अपनी चुप के किले में बंद सारा दिन पास रहते हुए भी बहुत दूर दूर रहते। जब अब्बा घर पर होता तो यूं लगता था जैसे कहीं बाहर गया हुआ है, और वो जब बाहर होता तो लगता था कि इधर उधर ही कहीं होगा। कुछ अरसा मैं स्कूल जाती रही, फिर वो सिलसिला खर्च की ज्यादती की वजह से बंद हो गया। ये भी अच्छा हुआ क्योंकि स्कूल मुझे दिल से बुरा लगता था। वहां सब लड़कियां बड़ी खुश खुश आती थी, उनके पास बताने के लिए इतनी सारी बातें होती थी कि वो उस्तानी के पढ़ाते वक्त भी पर्चियों पर पैगाम लिख लिख कर एक दूसरे को पहुंचाती रहती थी। मुझे मेरी क्लास की लड़कियां बलबतौरी नासा चौड़ी कहकर छेड़ती थी, लेकिन मैं उनको कभी पलट कर कुछ न कहती थी। उनकी छेड़छाड़ उस ताने और लानत के मुकाबले में फूल की छड़ी थी जिससे मेरा दिल मेरी खातिर किया करता था। स्कूल से हटकर मेरी जिंदगी फिर कुएं की गाद बन गई। हर वक्त वही सुबह और शाम, वही चुल्लू भर पानी, वही चहबचा। जिंदगी में कभी बरकत नहीं, कभी इत्मीनान नहीं। फिर अब्बा मर गया। उस रात उसने चार खाने वाला कंबल ओढ़ा, अपनी खामोशी की मसहरी तानी और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। माँ दंग सी रह गई। ना उसने ऊंचे ऊंचे विलाप किए, ना दीवारों से टकराई, बस देखते ही देखते वो बंजर जमीन की तरह चटक गई। हमारे ना कोई रिश्तेदार आए, ना कुरान खत्म हुए, ना गुठलियां पढ़ी गई। बस मोहल्ले वालों ने चंदा करके माँ के सर से बोझ उठा दिया और स्वयं के बाद माँ फिर से फैक्ट्री जाने लगी। अब्बा हर वक्त घर में रहने लगा। उसी अब्बा से डरकर मैं कोठे पर चढ़ जाती। हमारे घर की छत पर ऊंची ऊंची मुंडेर नहीं थी, बस आभरुआ किनारे थे जिनकी सूखी मिट्टी में तिनके चमकते रहते हैं। उसी किनारे पर बैठे हुए मुझे नुक्कड़ से आती हुई माँ दिखाई देती तो मैं नीचे चली जाती। मोहल्ले में बहुत लड़कियां थी लेकिन मेरी चुप का ताला खोल खोल कर वो अब बेजार हो चुकी थी। अब मैं थी और कोठे की मुंडेर, आसमान पर उड़ने वाली चीलें, मोहल्ले के कबूतर और शाम को लौटने वाली कौओं की कतारें। एक रोज चौथे कोठे से मुझे सीटी की आवाज सुनाई दी। तब मुझे मालूम नहीं था कि सीटी बजाने वाला कदीर खोखे वाला है। तब मुझे ये भी मालूम नहीं था कि कदीर के पांच बच्चे हैं और उसकी बीवी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत औरत है। मुझे तो सिर्फ इतना दिखाई देता था कि कदीर का पक्का घर सारे मोहल्ले में खूबसूरत और ऊंचा था। उसकी खिड़कियों में पर्दे थे और उसकी दीवारों में जालियां बनी हुई थी। सबसे ऊपर एक हवादार कमरा था जिसकी खिड़कियों पर आधा फिरोजी आधा हरा ताजा ताजा रंग किया हुआ था। यही कमरा मेरा पहला घर बना। इसी कमरे में पहली बार कदीर ने मुझे अपने खोखे से लाकर ठंडी कोका कोला पिलाई। प्लास्टिक के क्लिप, नकली बालियां, कांच की चूड़ियां और नाक में डालने वाला बड़ा चमकदार लेकिन छोटा कोका दिया। कदीर की हर बात अपने खोखे की तरह थी। वह थोड़ी कीमत पर ज्यादा माल खरीदने का आदी था। उसके यहाँ उधार कतई बंद था और वो किसी ग्राहक को भी नाराजगी का मौका नहीं देता था। पता नहीं मैं अब्बा के डर से वहां जाती थी, पता नहीं जवानी में तन्हाई का सांप क्यों ऐसे बिलों में ले घुसता है। खुदा जाने, तृप्ति, संपन्नता, जी भरकर कुछ खाने, कुछ हंस लेने, कुछ वक्त झोली भरकर गुजारने की ख्वाहिश मुझे वहां खींच कर ले जाती थी। शायद कभी कभी कोई वजह नहीं भी होती। बस यूं ही इंसान जिंदगी के पहिए में रेशम की थान की तरह उलझता चला जाता है। करीर को अपने खानदान से बड़ी मोहब्बत थी। वो मासियों, फूफियों, साढ़ुओं की बातें करता थकता ना था। उसे अपनी बीवी से भी बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि उसकी बीवी उसके खानदान का एक अहम हिस्सा थी। वो मिलन के छड़ों में भी उसी का नाम ले लेकर मुझसे लिपटता रहता। उसकी मोहब्बत भूखे अंदाज की थी जिससे मेरे लहू का पंछी कभी जख्मी होकर ना गिरता बल्कि ऊपर ही ऊपर और ऊपर उड़ता चला जाता। अपने बच्चों की बातें करते कदीर को बड़ी खुशी मिलती थी। अपनी खानदानी परंपराओं का, अपनी मोहल्ले की साख और बिरादरी की इज्जत का उसे बड़ा ख्याल था। कदीर भी दरअसल संपन्नता से अपरिचित था। उसकी सारी जिंदगी भी धंधे के पैमानों में नाप तोल कर गुजरी थी। वो इतनी छोटी उम्र से खोखा चला रहा था कि अब उसकी जिंदगी खाली खोखे के अलावा और कुछ न थी। इन सब बंधनों के बावजूद वो बड़े सलीके से मुझसे मिलता था। वो बड़े हिसाब से अपने खोखे से ऐसी चीजें मेरे लिए लाता जो उसके बाल बच्चों की हक तलफी ना करते। वो अपनी जिंदगी की लज्जतें यूं इकट्ठी करता था जैसे कोई बड़ी ही हिसाब का पान लगा रही हूँ। बराबर का चूना, बराबर का कत्था, चुटकी भर जरदा। उसकी जज्बाती जिंदगी भी एक खास पैमाने पर चलती थी। ना यहाँ कोई उधार था, ना फिजूल खर्ची। वो जो कुछ मुझे देता फौरन उसकी कीमत वसूल कर लेता। लेकिन मेरी बोल बुलारे वाली माँ यह सब कुछ कैसे समझ सकती थी। जब बड़ी शाम गए उसकी आंख खुली तो चंद लम्हे वो मुझे देखती रह गई। मैं समझी शदीद गम ने उसके जहन को विकृत कर दिया है। लेकिन फिर वो मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोली,
बोल अभागिन, कौन सा महीना लगा है तुझे, बोल मुई।
मैं उसे कैसे समझाती कि ऐसे लेखदारों के साथ महीना नहीं चढ़ा करते। ऐसे लोगों के साथ ना कभी नफा होता है ना नुकसान, सिर्फ जिंदगी का बही खाता ऐसी संख्याओं से भर जाता है जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता।
बोल, फिर मिलेगी तो उससे? बोल।
पूरे हाथ का चाटा आया और बिजली की तरह मेरे जिस्म से गुजर गया। मैं माँ को क्या बताती कि मुझे कदीर से मिलने का कुछ ऐसा शौक भी नहीं था। ये बात अगर मैं कदीर या माँ को समझाने की कोशिश करती तो शायद वो दोनों मुझे जान से मार देते।
बोल घुमक्कड़ी, बोल हरामखोर, मिलेगी तो उससे?
मैंने माँ के पांव पकड़ लिए। अपने दुख की वजह से नहीं, मेरे अपने कोई दुख नहीं थे, लेकिन मैं उसे इस कदर हलकान होते देख नहीं सकती थी। अगर वो मुझे मारती रहती तो शायद मुझ पर कोई असर ना होता, लेकिन अब वो अपने मुंह पर चाटे मार रही थी। उसे यूं अपने से बदला लेते हुए देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी कसमें खाई कि फिर कदीर से नहीं मिलूंगी। कुरान उठाया, उसके बाद मैं कभी कदीर के कोठे पर नहीं गई। लेकिन माँ चूंकि सारा दिन फैक्ट्री में काम करती थी, इसलिए उसे कभी यकीन ना आ सका कि मेरे वादे सच्चे थे। वो मुझसे बहुत सतर्क हो गई थी। जब मैं सो जाती तो वो चोरी चोरी आकर मेरी कमीज में मेरे पेट से उठाती और बड़े फूले फूले हाथों से मेरे पेट की टोह लेती। उसे पूरा शक था कि ये अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। कभी कभी रात के पिछले पहर वो मेरे सरहाने बैठ कर हौले हौले रोने लगती, जैसे बिल्लियां मस्ती में आकर बोलती हैं। करीर ने मेरे खाते को फिर कभी ना खोला, ना मैं कभी उसके कोठे पर गई। डूबी रकम पर वो ज्यादा वक्त जाया करने का आदी न था। इतने सारे मेलजोल के बावजूद ना कोई नफा हुआ ना नुकसान। जिंदगी चुल्लू भर पानी खींचती रही, ना कोई संपन्नता आई ना तृप्ति का एहसास बढ़ा, बस सिर्फ सांस की डोरी न टूटी। फिर एक दिन फैक्ट्री से माँ बड़ी खुश लौटी। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा सा डब्बा था।
ले खा हाजरा, खा, तेरे तो नसीब खुल गए। आ चंद्रिये, मिठाई खा, तेरी बात पक्की करके आई हूँ बादामी बाग में।
बात पक्की कराने का शौक मेरे दिल में कदीर ने डाला। वो इतनी प्रीत से अपनी बीवी की बातें किया करता था कि मेरा दिल भी करता था कि कोई मेरे बारे में भी ऐसी बातें किया करे। मेरा ख्याल था कि एक रोज मुझे देखने वालियां आएंगी, मैं उसके चमकदार बूटों को देखती घर से विदा हो जाऊंगी। मुझे जंगल के उस पार जाने का बड़ा शौक था।
आ, मुंह लपेट कर ना पड़ी रहा कर, तेरा इंतजाम तो अल्लाह ने खुद किया। मैनेजर साहब की बीबी खुद मेरे पास आई। सुन रही है हाजिरा? नाजा बेटी, सुन रही है?
सुन रही हूँ माँ।
फिर खुश क्यों नहीं होती?
खुश हो रही हूँ माँ।
मैनेजर की बीबी बोली, मेरी बहन का बेटा है, पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर जायदाद का अकेला वारिस है। हम तो जायदाद का नफीसा भी मुंह से नहीं ले सकते, तू जायदाद वाली हो जाएगी। मैं खुद बादामी बाग गई थी मैनेजर साहब की कार में, घर देख कर आ रही हूँ। पीली हवेली है, दो मंजिला, पंखे, रेडियो, टेलीविजन, कालीन, सब कुछ है घर में। ले लड्डू खा, ऊपर वाली मंजिल में लड़का रहता है, बड़ा घर है, सारी उम्र रेशम पहनेगी, इस कच्चे कोठे के अजाबों से बची रहेगी। खुश हो जा, जिसका कोई सुधारने वाला ना हो, रब उसके काम करता है। रज खाना रज सोना।
और वो कैसा है?
माँ खूबसूरत है तो बेटा भी खूबसूरत होगा। गोरी चिट्टी, ये बड़ा सा कुक्का नाक में, पूरा बाजू चूड़ियों से भरा हुआ। कोई प्यारी बातें करती है हाजिरा, कोई प्यारी बातें करती है, बैठिए बहन जी, खाइए बहन जी, ये गद्दी कमर के पीछे रख ले, ठंडा पिएंगी कि गरम? मेरा तो वहाँ से आने को जी नहीं करता था, सच हाजिरा।
मैं चुप रही।
बादामी बाग वाली कह रही थी, हाजिरा बहन जी, हमें सिर्फ लड़की चाहिए जो हमारे गुड्डू को खुश रखे, उसे हमदर्दी करे, उसका दिल लगाए। हमें किसी चीज़ की तमाह नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अगर हमें लालच होता तो हम अमीरों की लड़की कभी के ले आते। हमें तो ये पता है कि गरीबों में गैरत होती है, मोहब्बत होती है, शराफत होती है।
मैं अंदर ही अंदर हंसती। बादामी बाग वाली न जानती थी कि इन्हीं तीनों के अभाव से गरीबी पैदा होती है। दौलत का अभाव तो सिर्फ गरीबों को सदाबहार बनाता है, असली बहार तो इन तीनों के ही होने से हुआ करती है।
ले सोनिए खा, असली मोती चूर के लड्डू हैं, ले खा।
अम्मा उस रोज बड़ी खुश थी। वो हांडी भूनते हुए कुछ गुनगुनाती रही, फिर मोहल्ले वालों को यह खबर सुनाने चली गई। वापस आई तो उसका चेहरा दिप दिप कर रहा था। मैंने माँ को इस कदर खुश कभी नहीं देखा। निकाह से एक रात पहले तक माँ इसी तरह हंसती गुनगुनाती रही। शादी से एक दिन पहले जब शाम को बादामी बाग से लौटी तो उसका चेहरा बुझा हुआ था और वो चुप चुप थी। मुश्किल से वो सूटकेस लाकर आंगन में रखा जिसमें कपड़े और जेवर थे। इसके बाद वो बगैर मुझे आवाज दिए अंदर गुसलखाने में चली गई। ना उसने सूटकेस खोलकर मुझे कपड़े जेवर दिखाए, ना मुंह से कुछ बोली। उस रात के बाद मेरी माँ ने फिर मुझसे कोई बात ना की। आधी रात को मैं उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर जाग गई। वो सूटकेस खोले कपड़ों को घूर रही थी। क्या हुआ माँ?
कुछ नहीं, तू सो जा।
फिर तू रो क्यों रही है?
कुछ नहीं।
माँ मुझसे लिपट गई। उसके ताने कोसने बद्दुआएं जिंदा हुआ करती थी। आज मुझे उस आलिंगन से यूं लगा होया उसकी जान जिस्म छोड़ रही है। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे बिछड़ने का हम कर रही है, लेकिन मेरा अपना दिल हर किस्म के जज्बात से खाली था। यहाँ ना किसी से मिलने की खुशी थी, ना किसी से बिछड़ने का रंज। मेरी जिंदगी के महीने और साल तो यूं गुजरते थे जैसे किसी गोदाम में नए साल का कैलेंडर लटकाने पर वो पुराने सालों के कैलेंडरों से जा मिले। माँ सुबह तक मुझसे लिपटी रही और रोती रही, और जब मेरी शादी का सूरज निकला और उसकी पहली सफेदी उभरने लगी तो माँ बोली,
देख हाजरा, नसीब से ना झगड़ना। औरत की सारी जिंदगी नसीब से चलती है। मुझे देख, 13 बरस की ब्याही आई, शौहर की कमाई का छोटा पैसा तक नहीं मिला। एक दिन इस घर के मालिक ने मुझे सीपी भर प्यार भी नहीं दिया। पर रानिए, मैंने नसीब से झगड़ा नहीं किया। जो मेरे करम अच्छे होते तो सब कुछ मिल जाता, हाथ पांव मारे बगैर मिल जाता। सुनती है कि नहीं? किसी को अल्लाह दौलत देती है तो औलाद नहीं देता, औलाद होती है तो सेहत नहीं मिलती। उतने तारे अल्लाह ने बनाए जितने शाम बनाए हैं। सब अपने अपने तारे का गम सहने को आए हैं इस जहान में।
पहली बार मुझे शक गुजरा, जैसे माँ मुझसे कुछ छुपा रही, मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि इन दोनों की उसे आदत नहीं थी। क्या बात है माँ?
कोई बात नहीं, हर माँ बेटी को कुछ ना कुछ साथ देती है। मैं तुझे दहेज तो दे नहीं सकती, दिलासा भी देकर रुखसत ना करूं।
मुझे रोना आ गया और मैं माँ से लिपट गई।
जब मैं यहाँ से फैक्ट्री जाती हूँ तो रास्ते में कई मैनहोल खुले मिलते हैं। अंधेरी रातों में उनमें राहगीर गिर भी पड़ते हैं। हाजीरा, यूं समझ ले सोनिए, हमारे रब ने हर चौड़ाई के हर गहराई के मैनहोल बिछा रखे हैं अपनी दुनिया में। आखिर आदमी कब तक बचेगा? बंदा बशर है, लंबी स्याह जिंदगी है, किसी ना किसी खट में तो गिर कर ही रहेगा।
तो मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं, क्या बात है, हुआ क्या है?
कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नया घर होगा, नए लोग होंगे, वहां तेरी माँ नहीं होगी लेकिन गरीबी भी नहीं होगी। हर जगह का अपना सुख है, अपना दुख है। जो लड़की मैके के सुख याद करती है वो कभी ससुराल घर जाकर खुश नहीं होती।
तुझे किसी ने कुछ कहा है माँ? बता, तू बताती क्यों नहीं? मेरी माँ चुप रही। उसकी चुप मेरी और अब्बा की चुप से भी अटल थी, क्योंकि शादी की दूसरी रात मेरी माँ चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी ससुराल वालों ने खामोशी से उसको खाक के सुपुर्द कर दिया और मुझको ना बताया। वो मुझे दो सदमे एक ही वक्त में ना देना चाहते थे। जिस तरह सतमाहे बच्चे को बनावटी टेम्परेचर में रखकर इस दुनिया में रहने के काबिल बनाते हैं, उसी तरह मेरी ससुराल वालों ने मुझे सुख आराम और बड़ी चापलूसी की रुई में बचा बचा कर कई दिन रखा, ताकि गुड्डू से बहुत पहले मैं उस घर की दौलत भरी जिंदगी की आदि हो जाऊं। जितने दिन घर में मेहमान रहे, यही सुनने में आया कि गुड्डू बीमार है और निचली मंजिल में अपनी माँ के कमरे में है। कई बार जी में आया कि एक नज़र गुड्डू को देखाऊं, उसकी बीमार पुरसी करूं, पर दूसरी मंजिल से नीचे जाने की हिम्मत पैदा नहीं। मेरी सास मेरी माँ का उलट थी, गोरी गोरी गोल गोल चुप चुप सी, बड़े सब्र वाली, बड़ी बर्दाश्त वाली। कभी कभी मुझे लगता जैसे वो इस दुनिया की ही नहीं है। उसकी आंखों में इतना गम होता कि मुझे उससे डर लगने लगता। माँ की मौत के बाद सबसे पहले मेरी सास ने मेरा दिल जीत लिया। वो चुपचाप बैठी होती तो मुझे बड़ा दुख होता, जैसे माँ को देखकर होता था। जिस रात पहली बार मैं गुड्डू से मिली, देर तक सास मेरे पास बैठी रही। उसका हाथ मेरे घुटने पर था और वो बार बार उसे थपक रही थी। वो जिस बात का सिरा पकड़ती, बीच में अधूरा छोड़कर चुपचाप मेरा मुंह तकने लगती। गुड्डू साहब का अब क्या हाल है जी?
ठीक है, अब तो आज आएगा तेरे पास।
अनदेखे दूल्हे की आरजू रोशन सूरज की तरह मेरे दिल से उग आई।
कभी कभी जो तसव्वुर औरत दूल्हे का बनाती है हाजरा, दूल्हा उससे अलग होता है, पर सारी चीज औरत का जज्बा है। घर औरत बनाती है, बच्चे औरत जनती है, मर तो ऐसे ही घर के बाहर की तख्ती होती है।
मेरा दिल पहली बार डरा, फिर मैंने सोचा शायद गुड्डू बदसूरत हो, इसीलिए ये भूमिका बांध रही है। शायद इतने दिन इसीलिए उसे मेरे पास आने भी नहीं दिया गया। लेकिन मेरी सास को शायद इल्म न था कि इतने दिन ससुराल में रहकर मैं परेशान हो गई थी। अब मुझे अच्छे बुरे आदमी की पहचान न रही थी, मुझे अपना शौहर दरकार था। बड़ी देर तक सास यूं ही बेमतलब चुपचाप मेरे पास बैठी रही। फिर जब वो आधी दहलीज के अंदर और आधी बाहर थी, तब वो बोली,
सुन हाजरा, हम लोग तेरी बड़ी कद्र करेंगे, तो सिर्फ गुट्टू की कद्र करना। वो हमारा इकलौता बेटा है, पांच बहनों का अकेला भाई। देख बेटी, जो कुछ वो तुझे ना दे सके तू हमसे मांगना, मेरे पास गुट्टू से ज्यादा और कोई कीमती चीज नहीं है।
मैं अपनी सास को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो जैसे अपने दिल की भट्टी को आंसुओं और बातों से ठंडा कर रही थी।
मेरे रिश्तेदारों में लड़कियों का अकाल नहीं है, लेकिन मैं गरीब घर की लड़की इसीलिए लाई कि गरीबों में हमदर्दी होती है, वो मोहब्बत करना जानते हैं। अब गुड्डू जैसा भी है तेरा है हाजरा, जैसा भी है सिर्फ तेरा है।
मेरी सास जल्दी से रुखसत हो गई। उसकी बात ठीक थी, गुड्डू सिर्फ मेरा था, लेकिन अफसोस मैं उसकी उतनी भी ना हो सकी जितनी की कदीर की थी। रात के पिछले पहर गुड्डू कमरे में दाखिल हुआ। पहले बार कुछ खुसुर खुसुर होती रही, फिर गुड्डू अंदर आया। वो अंदर आते ही मुझसे ऐसे चिमट गया जैसे रीछ दरख्त से झपट्टी डालता है। उसके पीछे मेरी सास और बड़ी दो नंदे खड़ी थी।
अम्मा मेरी दुल्हन, मेरी बीवी, मेरी अम्मा जी, पारी 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 दुल्हन है।
मेरी सास ने चुप कराने की कोशिश की तो वो रोने लगा।
देखो दुल्हन, ये मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देती थी, कहती थी दुल्हन भाग जाएगी, तू भागेगी? बता, मैं कोई बुरा हूँ? मैं अपना कायदा लाकर तुम्हें सुनाऊं? कहाँ है मेरा कायदा, कहाँ है? अरे लाते क्यों नहीं? मैं दुल्हन को कायदा सुनाऊंगा। हाँ, सब मुझसे बुरा सलूक करते हैं, फिर कहते हैं हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। मैं क्यों चुप रहूं बड़ी आपा? तुम चुप हो जाओ, तुम दफा हो जाओ। मेरी दुल्हन है, मैं से बोलूंगा, हाँ बोलूंगा।
ढीली मसहरी कभी कभी बांसों के साथ बांध कर लगानी बड़ी मुश्किल होती है। एक सिरे पर डंडों का क्रॉस ठीक करो तो दूसरे सिरे के डंडे सड़क कर पायों के नीचे से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सास नंदे तत्तो थम्बो करके गुड्डू को इंसान के रूप में पेश कर रही थी। कुछ देर बाद वो ढीली मसहरी मुझ पर तान कर जल्दी ही नीचे चली गई। उनका ख्याल था कि खतरे से ओझल होते ही खतरा टल जाएगा। ये शुरुआत थी, मेन होल में गिरने की शुरुआत।
एक अधपगले शौहर के साथ जीवन की शुरुआत। मैं इतनी उम्र बगैर अच्छा खाए पिए गुजारी थी कि अगर गुड्डू सामान्य सा पागल होता तो मैं शायद बड़ी रजामंदी और लगाव से आराम और दौलत की जिंदगी में टूट जाती। लेकिन गुड्डू पागल होने के साथ साथ आशिक मिजाज भी था। उसे लिपटाने, चूमने, मसलने का बड़ा शौक था। उसका जी चाहता कि मैं सारा सारा दिन उसके साथ पलंग पर पड़ी रहूं। वो नाश्ते की मेज से मेरा हाथ पकड़कर घसीटने लगता। गुड्डू, नाश्ता करने दो हाजरा को।
एक बात है अम्मी, मेरी पहली अम्मी, प्राइवेट बात, कमरे में करने वाली।
टोस तो खत्म कर लेने दो बेचारी को। फिर वो सबके सामने मेरे कान में मुंह ठूस कर एक आध ऐसी बात कहता जो सबको सुनाई देती और जिसका ताल्लुक जिस्म के ऐसे हिस्सों से होता जिनका जिक्र आमतौर पर लोग नहीं किया करते।
उठना अम्मी, उठना, जरूरी काम है, जल्दी चल। अरे चल ना अम्मी।
तू चल, अभी आ जाएगी। अभी कमरे में पहुंच कर मेरा फुंकारना, बोलना, उसे परे करना सब बेकार था। वो बंदरों की तरह उचक उचक कर मुझे चूमने लगता। मेरे जेवर कपड़ा उतारने में हुज्जत करती तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग जाता। ऐसे ही लम्हों में गुड्डू मुझ पर हावी हो जाता, क्योंकि उस सुनहरे बालों वाले पागल को रोता देखकर न जाने क्यों मेरे अंदर दुख की टीसें उठने लगती और मेरा जी उसे गोद में उठाने को चाहता। अजीब से दिन थे, अजीब सी रातें, तेज बुखार में आने वाले ख्वाबों की तरह। उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी दुरुस्त न थी। न जाने दिन को सूरज निकलता भी था कि नहीं, खुदा जाने रातों को अंधेरा होता भी था कि नहीं। मेरी सांस मेरी आव भगत में लगी रहती थी। नए नए जेवर और खूबसूरत कपड़े आते रहते थे। मेरी नंदे मुझसे शर्मिंदा शर्मिंदा परे परे रहती थी। मेरा ससुर अलबत्ता कभी कभी मुझे पास बिठा कर जिंदगी की ऊंच नीच समझाया करता था। गुड्डू पर कभी कभी सयानेपन के दौरे पड़ते तो मुझे बड़ी उम्मीद बन जाती, शायद कोई चमत्कार, कोई करामात हो जाए। ऐसे दिनों में कोई गुड्डू को पहचान ही नहीं सकता था। वो सर पर टोपी पहनकर, बाजू पर जानमाज लटकाए मेरे पास आता और बड़ी मीठी मुस्कुराहट के साथ कहता,
देखा जरा, मैं मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर सो जाना, बैठी इंतजार ना करती रहना।
पांच बहनों के इकलौते भाई की ऐसी नॉर्मल बात सुनकर मेरी सास का लबो लहजा नॉर्मल हो जाता। सो जाएगी, तुम फिक्र ना करो, तुम आराम से नमाज पढ़ने जाओ। वापसी पर वो सबको सलाम करके अपने कमरे में आता। बड़ी देर तक वो एक उम्र दराज आदमी की तरह दांत साफ करता रहता। फिर सोफे पर बैठकर बेड लैम्प की रोशनी में वो किताबें देखता रहता जिनको पढ़ना उसके लिए मुश्किल था। बड़ी रात गए वो पलंग पर आता और मेरी तरफ पीठ करके सो जाता। सचेत होते ही उसे मुझसे कोई गरज न रहती थी। ऐसे ही दिनों में वो मुसलसल मेरे ससुर के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। वापसी पर खामोशी से खाना खाता, फैक्ट्री की मसलों पर गुफ्तगू करता और फिर मुझसे मिले बगैर सिनेमा देखने चला जाता। उन दिनों मेरी सांस जमीन से 2-2 फुट ऊंचा चलने लगती। हमने सब कुछ गुड्डू के नाम करवा दिया है हाजरा, कोठी, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, सब कुछ। ये सब तो अपने अपने घर चली जाएंगे, सब कुछ तेरा है बेटा, तेरा और गुड्डू का। वो दिन बड़े पुरसुकून के होते थे। अगर मैं गलती से उसे किसी के सामने हाथ भी लगा लेती तो वो बिदक जाता और आवाज गिरा कर कहता,
क्या करती है हाजरा, किसी का लिहाज भी नहीं तुम्हें, मेरी जवान बहने देखती है।
लेकिन ये दिन ज्यादा नहीं होते थे। अनादिकाल के दर्द की तरह किसी सुबह उठते ही गुड्डू अपने चोले को उतार कर असली रूप में आ जाता। जब गुड्डू होश में होता उन दिनों ससुराल में ऊपर नीचे कह-कहे ही कह-कहे होते। मेरी नंदों के रिश्तों की बातें होती, सारा घर मैटनी शो देखने जाता, रिश्तेदारों की दावतें होती। मेरी सास दिल खोल कर मुझे सबसे मिलाती और ऊंची आवाज में कहती,
मेरी हाजरा का जादू देखा बहन जी, जो काम डॉक्टर न कर सके मेरी बहू ने कर दिखाया। 10 साल से सुरत मारी गई है गुड्डू की, अब देख लो चंगा वाला होशमंद हो गया है। हाजरा ने इसे नई जिंदगी दी है, हाजरा ने इसे इंसान बना दिया है।
मुझे अपनी सास की फराख दिली से बड़ी शर्म आती। वो माँ थी इसलिए उनका जज्बा सच्चा था और मैं औरत थी, और चूंकि मेरी जरूरतें अधूरी थी
इसलिए जो कुछ भी मैं जाहिर करती थी अंदर महसूस करने से महरूम थी। अगर मेरी सास का बस चलता तो वो खुद गुड्डू की बीवी बन जाती और सारी उम्र उसे अपने परों तले यूं छुपाए रखती जैसे बतख सूसू करती अपने अंडों को सेती है। कभी कभी गुड्डू पलंग पर पेशाब कर देता तो चोरी चोरी खुद ही चादरें गद्दे धो देती। मुझ पर गुड्डू की देखभाल का कोई भी बोझ न था। मैं अपनी सास को देखकर सोचती रहती, एक इंसान की इतनी सारी कमजोरियों पर कोई इस नफासत से पर्दा डाल सकता है? इतनी बड़ी कोताही के बावजूद उसे इस कदर जी जान से कबूल कर सकता है? कभी कभी मुझे लगता है जैसे अल्लाह मियाँ भी अपने बनाए हुओं को इसीलिए मौत के पर्दे में छुपा लेता है ताकि शैतान उसके बंदों की कोताहियों का मजाक ना उड़ाए। अपनी सास के सामने मुझे अपना वजूद एक चोर सा लगता था। उस घर का सारा सुख सारे आराम चाव चोच ले बेकार गए। मैं गुड्डू के लिए अपने दिल में जगह ना बना सकी। मैं कोशिश करती थी, संकल्प करती थी, लेकिन जहां सिलाई की जरूरत हो वहां टाके से काम नहीं चलता। जहां तन मन धन से तपस्या की जरूरत हो वहां जब तक की चूमा चाटी से गुजर नहीं हो सकती। खुदा जाने ये गुड्डू की वजह से हुआ, खुदा खबर माँ की मौत के बाद मेरा दिल खाली पिंजरे की तरह हो गया था या अल्लाह की मर्जी थी। जिंदगी कभी सीधा रास्ता नहीं पकड़ती, उसे तंग पगडंडी बंजर रास्ते पथरीले खंगरियाले मुकामों से गुजरने का बहुत शौक है। हरे भरे मैदानों में चलने वाले जानबूझकर कांटों से उलझते हैं। अमीरों की जिंदगी में हमेशा डॉक्टर दुख और बड़े बड़े नासूर होते हैं। ये दूसरी बात था जब मेरा बाया पांव आखिरी सीढ़ी पर और मेरा दाया पैर संगमरमर के खूबसूरत फर्श से 6 इंच ऊंचा था। मेरी सास ने पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए। जो इंसान गुनाह के एहसास से मेरी तरह बोझल हो वो तो अपने पाँव पर मुश्किल से खड़ा हो सकता है। उसे गिराने के लिए मारपीट धौल धप्पे की जरूरत नहीं होती।
बोल, आधी रात को तुम किधर से आ रहे हो? बोल हरामजादी।
मेरा सर पक्के फर्श से गोल्फ की गेंद की तरह टकराया।
ऊपर न कमरा है न पखाना है, सिर्फ बरसाती में इतनी रात के तो क्या करने गई थी नामुराद? बोल।
मेरा दिल दिमाग रूह खसलत सब पत्थर के हो चुके थे।
बोल, कौन था वो? कौन है हमारी इज्जत के साथ खेलने वाला?
मेरी सास तीसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी जार जार रो रही थी और ऊपर बरसाती में कंबल ओढ़े दिसंबर की सर्दियों में मेरा ससुर ठिठुर रहा था। मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं उसकी इज्जत के साथ खेलने वाली नहीं हूँ, मैं तो उसकी इज्जत बनाने वाली हूँ। लेकिन कुछ बातें जब होठों पर आती हैं तो अजब किस्म का झूठ लगती है।
कौन था ऊपर? कौन है हमारे घर में सेंध लगाने वाला? रामपुर एहसान फरामोश, कुछ तो बोल।
मैं ठंडे फर्श पर चित लेती थी और सोच रही थी कि अपनी सास को क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं और कहां जाकर खत्म करूं। क्या वो इतनी सारी उलझाव की बातें समझ भी सकेगी?
सुन हाजरा, या तो उसका नाम बता दे सीधे सुभाओ या फिर मैं तुझे खड़े खड़े तलाक दिला दूंगी।
मुझे अपनी सास से प्यार हो गया था, मैं उसे सीधे सुभाओ कैसे किसी का नाम बता सकती थी?
हाजरा, मैंने तेरी कैसे कुछ खिदमत नहीं की और उसका तूने ये बता दिया कल मुझे। बोल, बता उसका नाम। देख, मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन लेकिन बोल हाजरा, बता तू कौन था ऊपर?
मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैंने भी उसके खिदमत के बदले में इतनी बड़ी गुनाह की गांठ सर पर उठाई थी। ये गांठ बाजार की उन गांठों की तरह थी जिनसे पुराने बदबूदार इस्तेमाल शुदा साहू के कपड़े निकला करते हैं। शुरू सर्दियां थी जब एक रोज मेरा ससुर मेरे पास आया। उस रोज घर के तमाम लोग गुड्डू को लेकर एक मजार पर देख चढ़ाने गए हुए थे। मुझे बुखार था इसलिए मैं उनके साथ न जा सकी थी। मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई जैसे कोई चिड़िया आकर बार बार रास्ता तलाश करने में टकरा रही हो। बड़ी देर के बाद एक मरी सी आवाज आई,
हाजरा हाजरा।
मैंने दरवाजा खोला तो मेरा ससुर खड़ा था।
कैसी तबीयत है अब?
ठीक है जी। जब मैं लौटने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़कर बड़ी नरमाहट से कहा,
डॉक्टर साहब आए थे?
आए थे।
बड़ी देर तक वो मेरे पलंग के पास सोफे में बैठकर दवाइयों के पैम्फलेट पढ़ते रहे। शायद वो अपने अंदर विषय का सार तैयार कर रहे थे। जब मैंने थक कर उसकी तरफ पीठ कर ली तो वो खखार कर बोला,
तुमसे एक बात करनी है हाजिर। पता नहीं मेरी बात तुम किस रोशनी से समझो।
जी फरमाइए।
हाजरा, गुड्डू मेरा इकलौता बेटा है और मेरी सारी जायदाद उसके नाम है।
अल्लाह ने चाहा तो गुड्डू साहब ठीक हो जाएंगे। अम्मी जी तुर्बत मुराद के देख चढ़ाने गई हैं।
ठीक उसने क्या होना है, अमरीका तक तो मैं फिर आया। हाँ लेकिन एक सूरत है।
वो कौन सी सूरत थी उसके इंतजार में मैं कितनी देर तक उनकी तरफ देखती रही। फिर एकदम मेरे ससुर की आंखों से आंसू बहने लगे कतरा कतरा।
गुड्डू के घर अगर बच्चा हो जाए तो इस घर की इज्जत बच सकती है। इस घर का बूटा जरूर लगना चाहिए।
मुझे ये मालूम न था कि उस घर का बूटा क्यों लगना चाहिए था और बूटा लगने से किसी को क्या फायदा होता, लेकिन मुझे अपने बूढ़े ससुर पर तरस आ रहा था।
मुझे बचा लो, इस घर की खुशी, इस घर की इज्जत, खुशी, नाम, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है हाजरा, मुझे बचा लो।
मेरी सास तीसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी एहसानों की वो फेहरिस्त गिनवा रही थी जो उस थोड़े से अरसे में उसने मुझ पर किए थे। बाड़े की शॉपिंग, होटलों के डिनर, फिल्मों के नाम बार बार उसके होठों पर आ रहे थे। दूर कहीं एक मुर्गा सुबह लाने वाली बारीक सी आवाज में अजान दे रहा था। मुझे अपनी सास का वजूद पट्टा खाई गेंद की तरह नजर आ रहा था। वो भी अपने पागल बेटे के इश्क से टकरा टकरा कर जख्मी हो चुकी थी। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी।
बोला आजरा, बता दे खुदा के लिए कौन था वो, एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसका लहू चूस लूंगी। मेरे कुटुंब की खुशियों पर डाकिया डालने वाला मुझसे बच कर नहीं जा सकता।
मैं अपनी सास को क्या बताती कि मुझे भी गुर्जे गांव से परास्त कर सकता था। मुझ पर डाका डालने वालों ने अब रेशमी कमंद को इस्तेमाल किया था। मैं अपनी सास को समझा नहीं सकती थी कि जो रिश्ता इज्जत बचाने से शुरू हुआ था वो हमल ठहर जाने के बहुत बाद तक क्यों जारी रहा। कई बातें इतिहास की घटनाओं की तरह होती हैं, उनकी कई दलीलें, कई थ्योरियां तो हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई और असलियत तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।
बता हाजरा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिरी बार बता, हमारी खुशियों से खेलने वाला कौन है।
मेरी सास बेचारी ममता की मारी हुई कैसे समझ पाती कि जब से दुनिया बनी है एक ही खेल के साथ इज्जत को नत्थी ना किया होता तो इंसानी कौम हस्ती खेलती बहुत दूर निकल जाती। अब तो बंधे टके उसूलों से कोई रत्ती पर भटका और इज्जत के लाले पड़ गए। खुदा जाने पहले किस काफिर इश्क ने की और औलाद की बढ़ोतरी वाले खेल के साथ इज्जत का तसल्लुल तावीज के तौर पर बांध दिया। पता नहीं किस सदी में किस नई सोच वाले ने मजहब, इश्क और जिस्मानी ताल्लुकात की जरूरत को एक जगह करके इश्क की संहिता तैयार की। अब तो इज्जत जिस्मानी रंगों और मोहब्बत ऐसे अजीब किस्म के तिकोन बन गए हैं जिनका हर कोना सलीब की तरह समकोण और हर मंडल कयामत से भी लंबा है।
हाजरा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तेरे पेट में किसका हमल है।
मेरे जी में आया चीख कर कहूं कि आज तक किसी को मेरे हमल की खुशी नहीं हुई। जो भी जानना चाहता है यही जानना चाहता है कि हमल किसका है। क्या उसी हमल की खुशी की जा सकती है जो जायज बंधे टके उसूलों के तहत होता है। अगर फितरत का भी मंशा यही होता तो औरत को अपनी नाजायज औलाद से कभी प्यार नहीं होता।
बोल हाजरा, कौन है वो, अगर तू बता देती है तो कसम खुदा की मैं हराम की औलाद को भी अपनी कहूंगी, पर अगर तूने ना बताया तो तुझे तलाक दिलवा दूंगी।
फिर मैं अपनी सास को बताना चाहती थी लेकिन मुझे उस औरत से प्यार था, उसके दुख से गहरी हमदर्दी थी।
मैं एक ही जुमले में उसका दोहरा नुकसान नहीं कर सकती थी। मैं अपने घर चली आई चुपचाप। यहाँ हर वक्त मेरा अब्बा रहता था। बोलने, झिड़कने और एहसास जताने वाली माँ जाने कहाँ चली गई थी। और आज अचानक 22 बरस गुजर जाने के बाद ये तीसरी बार था जिस वक्त मेरा दाया पैर सीढ़ी की आखिरी टेक पर था और मेरा बायां पांव जमीन से 6.25 इंच ऊंचा था, किसी ने पीछे से मेरा बाल पकड़ लिया। मेरा जिस्म तो पहले ही जीना उतरने से हाँ रहा था, उसे जमीन पर गिरते देर नहीं लगी। मुझे यूं लगा जैसे गिरते ही मेरी कनपटी से हल्की सी खून की धार निकलने लगी है।
इस वक्त आधी रात को तू कहां से आ रही है? बोल, बता, दूसरी मंजिल में तेरा क्या काम था इस वक्त?
मैं चुप रही। जवान बेटे को मैं क्या बताती कि बेटों को पालने में माओ को क्या कुछ कर गुजरना पड़ता है।
मैंने इधर उधर से बहुत सी बातें सुन रखी हैं। तेरा क्या ताल्लुक है मालिक मकान से? बोल, शेख साहब से तेरा क्या नाता है? बोल। मैं तुझे क्या समझता था माँ? मैं समझता था कि तू जन्नत की हूर है, फरिश्ता है। मैं समझता था कि क्या हुआ, मेरा बाप पागल था, मेरी माँ तो। लेकिन
मैं फिर भी चुप रही। मैं उसे क्या बताती कि शेख साहब के हम पर एहसान थे। उन्होंने बरसों हमारा साथ दिया था, किराए के पैसे कभी वसूल नहीं किए थे और इसके अलावा हर तरह की मदद की थी। जवान आदमी के आंसू बिना रुके उसकी आंखों से बरस रहे थे। वो बचपन से आज तक की सारी महरूमियां गिनवा रहा था। बाप के घर से टूटी हुई हर आस उसे डस रही थी। वो अपने आप से झगड़ रहा था, दुनिया से झगड़ रहा था।
बोल, कौन था ऊपर? बोल माँ, शेख साहब से तेरा क्या नाता है?
पहली बार मेरी जुबान खुली, चुपके विकराल मुंह से आवाज आई।
तेरा किसी से कभी कोई नाता नहीं रहा बेटा, मेरा किसी से कभी कोई नाता नहीं रहा।